उदादि मभ्यम। भगवान कहते हैं कि देवी संपदा को आश्रय करने वाले या देवी संपदा को अपने जीवन के मां ढालने वाले ऐसे देवी संपदा जो महात्मा जन है वे अनन मन से मुझको भरते हैं। महात्मा तू मांग पार्थ पार्थ महात्मा गण जो है देवी संपदा को आश्रय करने वाले महात्मा गण है महात्मा जन है वे एक प्रकार से अनमन से मुझको भजे। भूतों का आदि और अविनाशी जान गए तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि एक प्रकार से हमारे लिए काफी सामान है इसके लिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संसार के बीच के मां समझो कि महात्मा किसको मिलता है कि जो महात्मा को चाहता है उसको ही महात्मा मिल जाता है। महात्माओं की कमी नहीं इस नीति से कमी नहीं कि श्रद्धा की कमी है। श्रद्धालु को तो महात्मा मिल ही जाता है तो श्रद्धा होनी चाहिए हमारे हृदय के बीच के मां। दूसरी बात यह है कि शास्त्र जो है एक प्रकार से उसके द्वारा जो बात कही गई है वो भगवान की बात है। तीसरी बात यह है कि हमारे यदि विश्वास हो तो वे भगवान हमारे हृदय का विराजमान हो रहे हैं और हर एक बात के लिए हम उससे पूछ सकते हैं और वे हमारे को सलाह दे सकते हैं तो इसके लिए कोई कमी की बात नहीं है। इसलिए हम लोगों को एक प्रकार से भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना थी। उस समय के बीच के मां भगवान थे अर्जुन को जब उपदेश दिया तब भगवान थे और अब भगवान नहीं है ऐसी बात नहीं है। भगवान तो सदा सर्वदा ही मौजूद है। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां भगवान न हो। ऐसा कोई काल नहीं है कि जिस काल के मां भगवान न हो। भगवान सब देश के मां और सब काल के मां सदा ही विराजमान होकर के रहते हैं। केवल हमारे विश्वास की कमी है श्रद्धा की कमी है। जिसकी आत्मा में श्रद्धा और विश्वास है उसके लिए भगवान सदा सर्वदा सब समय के बीच में सब जगह मौजूद है। इस बात को ध्यान में रख कर करके कि और हमको भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान की यही आज्ञा है तुम भगवान कहते हैं कि मैं सारे भूत प्राणियों के मां व्यापक हूँ। इस सारे भूत प्राणियों का समझो कि उपादान कारण भी मैं हूँ और निमित्त कारण भी मैं हूँ। उपादान कारण और निमित्त कारण का क्या भेद है कि जैसे सोने के आभूषण हैं उन आभूषणों को बनाने वाला जो है सुनार वो तो है निमित्त कारण और वो सोना जो है वो है उपादान कारण। उस उपादान कारण कोई भी नैयायिक जो है समझो कि समवाय कारण कहते हैं तो समवाय कारण कह जो उपादान कारण कह जो बात एक ही है। तो भगवान का ये कहना है कि संसार के रूप के बीच के मां मैं हूँ या जो संसार जड़ चेतन रूप दिख रहा है और चेतन के मां भी जो चर और अचर जो भेद दिख रहा है ये सब मैं हूँ। मेरे से कोई अलग कोई वस्तु वस्तु नहीं है। इस वास्ते भगवान उपादान कारण हुए और भगवान कहते हैं इसकी रचना भी मने की है इस वास्ते उसके निमित्त कारण हुए। तो इस वास्ते भगवान ही तो इसके उपादान कारण है और भगवान इसके निमित्त कारण है। इसलिए आप संसार तो भगवान को ही स्वरूप है जिम्मापक समझ करके और जो संसार की सेवा करता है वो भगवान की सेवा करता है। यह बात समझाई गई है गीता की धारण ज्ञा के 46 के श्लोक में यते प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं कथम स्वकर्मणात्मभ्यर्चिन विदति मानव। जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूज कर करके हर मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान में रख करके और सबको नारायण का स्वरूप समझ करके हमको सब की सेवा करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए, सब चीजों सेवा करना, सत्कार करना, आदर करना, यही उन सबकी पूजा है। तो यह बात बहुत ही एक प्रकार से हम लोगों के लिए सुगम है। इतनी सुगमता फिर हमारे लोगों को मिलनी मुश्किल है। पर तुम तो समझो कि मनुष्य का शरीर ही मिलना मुश्किल है, और मनुष्य का शरीर जब मिल जावे तो एक हिंदुस्तान के माँ जन्म होना, माने इस आर्य प्रदेश के माँ जिसको हम भारत वर्ष कहते हैं, इसके माँ जन्म होना, जो यह मुक्ति का ही एक प्रकार से केंद्र है, यहाँ जन्म होना कठिन है। और यहाँ यदि आर्य देश के माँ जन्म हो गया तो फिर हिंदू जाति के माँ जो सनातन जो हमारा धर्म है उसके माँ जन्म होना बहुत ही तो मुश्किल है। और यदि सनातन धर्म के माँ जन्म भी हो गया तो इस प्रकार का जो अक्षरों का ज्ञान होना मुश्किल है, और ये सब पुस्तकों का थोड़ा ज्ञान भी हो जावे तो समझो कि अच्छे पुरुषों का संग होना मुश्किल है। तो ये सारी बात मिलकर के भी यदि हम वंचित रह जाओ परमात्मा की प्राप्ति से, तो फिर हमारे समान संसार के माँ समझो की और मूर्ख कौन होगा। ये सब बातें ध्यान में जाकर के और अपना जल्दी से जल्दी लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि शरीरों का कोई भरोसा नहीं है, और हमारे पास में ऐसा किसी के पास में कोई ऐसा उपाय नहीं है। आज मृत्यु प्राप्त हो जावे और हम कहें आज नहीं मरेंगे कल मरेंगे, ऐसा कोई भी हमारे पास उपाय नहीं है, आज ही मरना होगा, तो ऐसी बात है और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर हमको एक प्रकार से खतरे के मां क्यों रहना चाहिए, जोखिम के मां क्यों जाना चाहिए, जोखिम उतार ही देनी चाहिए। जोखिम का उतारना यह है कि अब से लेकर के मरण तक हम भगवान को याद रखते हुए और भगवान की आज्ञा का पालन करें। ये सिद्धांत जो है समझो गीता का है, और ये उपदेश भगवान अर्जुन के लिए दिया था। गीता की आठवें अध्याय के सातवें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुत्तमं युद्धं च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामे अवश्य संशयम्। अर्जुन एक प्रकार से तू सब समय के माँ, इसलिए तू सब समय के माँ, इसलिए किस लिए, इसलिए ये बात बतलाई है कि यम यम वापिस समभावं सत्संते कलेवरम संत में रेति कौन से सदा तदभाव भावित है। ये आखिर जाके छठे श्लोक में भगवान क्या है, इसी पर कहते हैं तस्मा, जिस भाव को भाता हुआ याद करता हुआ यह मनुष्य शरीर को त्याग करके जाता है, उसी उसी स्वरूप को यह प्राप्त हो जाता है। सदा उस भाव को भावता हुआ यह पुरुष हम समय के बीच के माँ जिस भाव को भावता है उसी को प्राप्त हो जाता है। ये भाव भगवान ने गीता में बताया है। इस वास्ते हे अर्जुन, शरीर का क्या भरोसा है कि किस समय इसके प्राण चले जावे, इस समय में हर समय में भगवान को याद रखना चाहिए, ये भगवान का आशय है। दूसरा ये कहना है कि जो सदा सर्वदा भगवान को याद रखता है उसको अंतकाल के माँ भगवान निश्चय याद आते हैं, और अंतकाल के माँ भगवान को याद करता हुआ जाता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इसके पूर्व के सिद्धों के बीच के माँ साफ कहा है कि अंतकाले जमावे वह समण मुक्तवा करे वरम ये प्रयाति समद भाव याति नाश संते। ये गीता की आठवीं अध्याय का पाप का श्लोक है, इसका भी प्राय यह है कि हम समय के बीच के माँ भगवान कहते हैं कि हम समय के बीच के माँ जो मेरा सम करता हुआ शरीर को त्याग करके जाता है वो मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो इसलिए तस्मात का अर्थ होता है इसलिए, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय के बीच के माँ मुझको याद रखता हुआ, और तुम तो तेरा जो धर्म है सत्य तू है, तेरा युद्ध करना धर्म है, तू युद्ध तू कर, मन और बुद्धि तू मुझमें लगा दे, मन बुद्धि मुझ में लगा दे और इस प्रकार से लगाने से तू मेरे को ही प्राप्त हो गया, इसका मत करना। शंका की या गुंजाश थी कि सब काम धंधो छोड़ करके एकांत में बैठ करके और भगवान को भजन ध्यान करने से मुक्ति हो जावे, वो बात तो ठीक है, किंतु भगवान कहते हैं कि सदा सर्वदा कर्म करता हुआ भी जो आदमी मेरी शरण लेकर के सदा सर्वदा कर्म करे तो कर्म करता हुआ भी मैं की मुक्ति हो जावे। ये बात जो है भगवान ने साफ शब्दों के बीच में गीता के 18वें अध्याय के 56 के श्लोक में कही है, सर्व कर्मान अपि सदा कुर्वाणो निर्वासी है मत प्रसादा द्वापनोती सातसंग पद मध्यम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन सदा सर्वदा कर्म करता हुआ मनुष्य मेरी शरण लेकर के मेरो आश्रय लेकर के मुझको हर वक्त याद रखता हुआ मनुष्य, भगवान ने हर वक्त याद रखना है ये बाको आश्रय लेना है, तो सब समय के माँ भगवान कहते मेरो आश्रय लेकर के और जो तुम जो सदा सर्वदा कर्म करता है वह मेरी कृपा से ही शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। ये स्वयं भगवान है तो कहते हैं इस लोक का आशय जो मैं आपको बताया कि अर्जुन के लिए भगवान ने कहा कि तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनुष्यम युद्ध है, तो अर्जुन है तो क्षत्रिय था इसलिए उसको भगवान कहते हैं कि सब समय में मुझको याद रखता हुआ युद्ध कर। जो वैश्य भाई है उनको ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे लिए कहते हैं कि एक प्रकार से तुम अपने वैश्य का जो कर्म है वो करो, क्योंकि वैश्य के लिए ये कर्म बतलाए कृषि गोरक्ष वाणी जम वैश्य कर्म स्वभाव जम। ये भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के मां कुमारित के श्लोक के पूर्वार्ध में बतलाया है, उसी सब बातों को लक्ष्य में रख करके सब वर्णों का कर्म बतला करके और ये श्लोक आगे जाकर कहा कि ये प्रवृत्ति भूतानांग ये न सर्विदम कदम स्वकर्मात्मा सिद्धि मान है। जिस परमात्मा माने इस संसार की परमात्मा से उत्पत्ति हुई है और परमात्मा इसके मां व्यापक है ये समझ करके कि और कहना है भगवान का जो कोई मुझको समझ करके और अपने कर्मों के द्वारा जो एक प्रकार से मेरी जो पूजा करता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो भगवान एक प्रकार से थी यही भाव दिख रहा है, इस भाव को ख्याल में रखकर के हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। और मय्यर पित मनोबुद्धि ये जो कहा कि मेरे में ही मन और बुद्धि जिन्होंने अर्पण तुम अर्पण करते फिर मन ही प्राप्त होगू, तो मन और बुद्धि को अर्पण करना क्या है, बुद्धि का अर्पण करना यह है कि परमात्मा है, परमात्मा है ये बुद्धि से निश्चय हर वक्त रखना ये एक प्रकार से बुद्धि का भगवान के अर्पण करना है। बुद्धि के बीच के मातम जो कोई गुंजाश नहीं रखे कि परमात्मा नहीं है या एक प्रकार से क्षण मात्र के लिए भी ये गुंजाश नहीं रखे, बुद्धि के बीच के मां सदा सर्वदा ये निश्चय अटल हो जावे, एक ये बात बुद्धि के मां एकदम निश्चय हो जावे कि भगवान है परमात्मा है इसमें कोई शंका नहीं है कोई संशय नहीं है, तो उसके उद्धार में भी कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं मन बुद्धि मेरे अर्पण करने के बाद में वो मुझको प्राप्त होता है इसमें कोई शंका नहीं। मन को अर्पण करना क्या है कि बुद्धि के द्वारा जो बात अपने निश्चय कर ली है उसी के अनुसार भगवान का चिंतन करना, ये मन को भगवान के मन अर्पण करना है, भगवान का स्मरण करना, मन से भगवान का स्मरण करना, तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, इस वास्ते हे तू सब काल में तू मेरा स्मरण करे यानी तू मुझको याद कर याद रख, तो हर समय में जो भगवान को मन से जो स्मरण करना है चिंतन करना है भगवान को जो याद रखना है यही मन का भगवान के अर्पण करना है। इसी का यह फल है कि वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान में रख कर करके और हर वक्त भगवान को याद रखना चाहिए कि मैं जो काम करता हूँ ये भगवान का काम है, मैं जो सेवा करता हूँ भगवान की सेवा करता हूँ, ये पदार्थ मात्र जो है तो भगवान को स्वरूप है और ये जो चेष्टा हो रही है ये सब एक प्रकार से भगवान की लीला हो रही है और मैं एक प्रकार से भगवान का सेवक हूँ और भगवान हमारे स्वामी है और उस स्वामी की इस रूप में मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरे पर भगवान की बड़ी भारी दया है जो मैंने यू और कैसे समझाए हो और मेरे से सेवा करवा रहे हैं, तो सबने समझ करके परमात्मा को शुरू सबकी सेवा करनी चाहिए। इसकी कसौटी यह है कि जब इस प्रकार की हमारी भीतर की धारणा हो जाएगी तो फिर कोई लाभ हानि के बीच के माँ हमको कोई सुख दुख नहीं होगा। जैसे कोई गुमास्ता किसी मालिक के यहाँ काम करता है तो उसे मालिक के जो नफा होता है या नुकसान होता है तो उसका मालिक ही मालिक है, उसका अपना कोई संबंध नहीं है, वो तो एक निमित्त मात्र है। इस वास्ते अपने को तो निमित्त मात्र समझ देवे और एक प्रकार से चाहिए जो कुछ नफा नुकसान का समझ भगवान के साथ है, तो मैं तो किसी में उसके फिर आसक्ति रहती अपने किसी के मन द्वेष होता, क्योंकि भगवान का गुमास्ता बनकर जो काम करता है वो बड़े उत्कोटि का काम होता है। जब तक उस काम को मैं मेरा समझ करके करूंगा तो उसके बीच के माँ राग द्वेष में गुंजात होगी, उसमें हर शोक में गुंजात होगी, तो हर शोक और राग द्वेष ये विकार है, तो वे पुरुष इस प्रकार से करते करते निर्विकार अवस्था में प्राप्त होकर के और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो चाहे कोई अपना व्यक्तिगत काम हो एक प्रकार से तो वह दुकान भगवान की समझनी थी, चाहे किसी संस्था के बीच माँ हम वेतनी काम करते हैं या समझो कि बिना वेतन लिए काम करते हैं, दोनों के लिए कोई फर्क की बात नहीं है। वास्तु के बीच माँ समझो कि हमारे पास के बीच माँ कुछ नहीं है तो हम भगवान के यहाँ काम करके प्रसाद के रूप में यहाँ ही एक प्रकार से अपने जीविका चलाएंगे। हम जीवेंगे कैसे यदि भोजन नहीं करेंगे तो कैसे जीवेंगे, और भोजन हमारे पास में करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो हमारे लिए वो भगवान का प्रसाद। वास्तव के बीच के वहाँ समझो कि दुनिया में जो कुछ तो भगवान का ही है, हम कहीं रोटी खाते हैं और उसको हम भगवान का प्रसाद मान ले रहे तो वो हमारे भगवान का प्रसाद है, और हम उसको प्रसाद नहीं माने तो हमारे लिए वो नहीं है। सारा जो आपने जो एक रे है वो मानता के ऊपर है, तो इसलिए हमको ये अपने आत्मा में निश्चय कर लेना चाहिए कि ये सब कुछ है तो परमात्मा का ही है और मैं भी परमात्मा का हूँ, ऐसा समझ करके और सबको नारायण का स्वरूप मान करके और हंस हंस करके नाच नाच करके सबकी हमको सेवा करनी चाहिए। सेवा करने के समय के माँ समय समय के ऊपर हमारे हृदय के माँ प्रफुल्लित होनी चाहिए, रोमांच होने चाहिए, आशीर्वाद होने चाहिए, जो भगवान की हमारे पर इतनी दया है। मान लो थोड़ी बार भगवान यहाँ आ जावे और इसकी सेवा का काम हमको प्राप्त हो जाए, या सेवा करने के समय में अपने चित्त में कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद होता है। इसी प्रकार से प्रसन्नता शांति और आनंद हमको मिल सकता है कि एक प्रकार से हमारी यदि वास्तव के बीच के माँ जो ये भावना हो जावे कि सब परमात्मा को स्वरूप है। भगवान गीता में यह बात जगह दिवा कहते हैं, यदा भूत प्रसंग भाव है नेक समी सत्यव से विस्तारण ब्रह्म संघ ददा, कब है भूतों का जो प्रत्यक्ष भाव है वो सबको एक में ही देखता है। माने इस समय के बीच के माँ ये भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा के बीच के माँ स्थित देखता है और उस परमात्मा से इस सब की उत्पत्ति समझता है। यानी नाना प्रकार का जो भाव है ये समझता है कि ये सब इस रूप में भगवान ही है और इनकी उत्पत्ति जिस सब की भगवान से हुई है। यानी भगवान ही तो इसके उपादान कारण है और भगवान इसके निमित्त कारण है। इस संसार की उत्पत्ति के करने वाले भी भगवान और संसार के रूप में प्रकट होने वाले भी भगवान। तो इस पाप की भावना होने से धारणा होने से वो फिर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। ये समझता है कि जिस काल के बीच के माँ यदा भूत पृथक भाव है नेक समुपति और तदेव विस्तार ब्रह्म संपदते दधा। इसका ये अर्थ होता है कि यदा माने जिस काल के माँ मनुष्य जो है भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा के माँ समझता है कि परमात्मा ही एक नेक रूप में दिख रहे हैं। परमात्मा से उत्पन्न हुई है तो वो फिर परमात्मा नहीं प्राप्त हो जाता है ना ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है उस काल के लिए माँ। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि जब हमारी ये भावना हो जाएगी कि जो कुछ हो सब परमात्मा ही है जो कुछ हो सब परमात्मा ही है तो इस अभ्यास से भी आगे जाकर के हम परमात्मा को ये तो प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बड़ा उत्कोटि का साधन है। तो हमको ये साधन करते करते प्रसन्न होना चाहिए मुग्ध होना चाहिए और जिसके जिसके वहां खूब उल्लास प्रकार से आमोद और प्रमोद होना चाहिए। इस प्रकार से हम करते रहे तो बहुत जल्दी हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो ये बात आपको बताई कि प्रवृत्ति मार्ग के बीच के मान है करके के और किस प्रकार से मनुष्य का कल्याण हो सके है। तो ये भक्ति सहित ये निष्काम कर्म योग है। दूसरा जो प्रवृत्ति के बीच के मान निवृत्ति का जो मार्ग है जैसे एकांत के बीच के मान जाकर करके के और सद में की जो बात है वो उसके दो भेद हैं। एक तो ज्ञान का मार्ग है और एक भक्ति का मार्ग है। आज प्रातः काल जो बताया था वो ज्ञान का मार्ग था। जो भी कछु है एक सच्चिदानंद ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है तो संसार का अत्यंत अभाव कर करके एक विज्ञानानंद ब्रह्म का ही ध्यान रखना है वो एक निवृत्ति का मार्ग है और दूसरा एक भक्ति का मार्ग है। भगवान की भक्ति करना कि भगवान को अपना सेव मान करके अपने को सेवक मान करके उसका जप करना ध्यान करना मानसिक पूजा करना नमस्कार करना आदि जो भक्ति के जो अंग बतलाए हैं उसके अनुसार साधन करना उसका फल है भगवान के माँ अनन्य प्रेम होना और अनन्य प्रेम के माँ शास्त्रों के बीच के माँ बहुत से उपाय बताए उनमें भगवान की भक्ति का भी एक साधन बताया है। वो भगवान की भक्ति का जो साधन है वो सभी शास्त्रों में और सभी वर्णों के बीच के माँ किया जा सकता है और वो भक्ति का साधन व्यापार करते हुए संसार में कार्य करते हुए भी मनुष्य कर सकता है और संसार के काम को छोड़कर करके एकांत में जाकर के भी कर सकता है। तो एकांत के मां जाकर के मनुष्य को किस प्रकार से थी भगवान की भक्ति करनी चाहिए जिससे भगवान शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाए क्योंकि समय तो हाथ में बहुत कम है। इसलिए शीघ्र से शीघ्र एकांत में जाकर के भगवान की प्राप्ति हो जावे इसके लिए कार्यक्रम बतलाना चाहिए जिससे हम लोग एकांत में जाकर के भगवान की भक्ति करके भगवान को पाले। किसी भाई का ये पूछना है कि जैसे सतयुग त्रेता युग और द्वापर युग के भगवान जैसे मिला करते थे, भगवान स्वयं प्रकट होकर के जैसे ध्रुव प्रहलाद आदि को मिले हैं, और भी बहुत से ऋषि महात्माओं को और भक्तों को भगवान मिले हैं, और सुना जाता है कि एक प्रकार से भगवान अपने प्रेम से मिलते हैं, और कली काल के माँ भी मिलते हैं। तो इसका ये उत्तर है, इस कली काल के बीच के माँ तो समझो कि भगवान भूतों को मिले हैं, इसी कली काल के माँ भी जो है तो भगवान भूतों को मिले हैं। सुना जाता है कि जैसे नरसिंह मेहते को, मीरा बाई को, तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, इस प्रकार से और भी बहुत से भक्त हुए, और उनको भगवान इसी युग के बीच के मां कलयुग के मां मिले हैं। इससे ये हम लोगों को विश्वास करना चाहिए कि कलयुग के बीच के मां भगवान और युगों की अपेक्षा शीघ्र मिलते हैं। पद्म पुराण के मां बताया गया है कि सतयुग के बीच के मां जो है 10 वर्ष प्रयत्न करने से जो कार्य की सिद्धि होती थी, त्रेता युग के बीच के मां 1 वर्ष में होने लगी, और द्वापर युग के बीच के मां जो है तो 1 महीने में कार्य की सिद्धि होने लगी, और कलयुग के बीच के मां 1 दिन में ही हो सकती है। यदि को कि 1 दिन में हो सकती है तो वो साधन इस प्रकार का करना चाहिए कि जो 1 दिन में भगवान की प्राप्ति हो सके। तो विचार किया जाता है कि जैसे ध्रुव जी महाराज जो है उन्होंने समझो कि आपने भगवान का ध्यान किया और जप किया और तप किया, तो ध्रुव जी के माफक हम इस जमाने के जिसके मां एक प्रकार से जप और ध्यान करें तो 1 दिन के अंदर ही हमारे को भगवान की प्राप्ति हो जानी चाहिए। यदि उस प्रकार हम नहीं कर सके तो समझो कि 1 दिन की जगह और 2-5 दिन लग जाना चाहिए। तो ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तो जप किया था और भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान किया था। वो कैसा भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान किया था वो संक्षेप से आपको बताया जाता है। उन्होंने भगवान का ध्यान एक प्रकार से अपने हृदय में किया था, और मनुष्य अपने हृदय में भी ध्यान कर सकता है, और समझो कि आकाश के बीच के मां भी उसका ध्यान कर सकता है। जिस प्रकार आपको जिस प्रकार सुगम हो, आकाश में कैसे करना चाहिए कि ऐसा ध्यान करना चाहिए एकांत में बैठ कर करके मानो भगवान आकाश के बीच के वहां स्थित हो रहे हैं, और वे भगवान हमारे ऊपर अपने समझो कि गुणों की वर्षा कर रहे हैं। वे एक समझो कि गुणों की ऐसो मूर्ति है, तुम सत्यचिदान धन ब्रह्म ही समझो कि इस रूप के वहां आकर के विराजमान हो रहे हैं। कि जैसे निराकार जो जल है वो बादल के रूप में आकर के बरसता है, इसी प्रकार से भगवान निराकार होकर के फिर साकार हो जाते हैं, और वे एक प्रकार से अपने गुणों की वर्षा करते हैं। निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वे ही एक प्रकार से संसार के कल्याण के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए सगुण साकार के रूप में आ जाते हैं। तो वे सगुण साकार रूप में आकर करके और समझो कि भक्तों का उद्धार करते हैं। तो ऐसा जो भगवान का जो स्वरूप है वो आकाश के वहां सूचित है, उनके चरणों से लेकर के और मस्तक तक ध्यान करना चाहिए। उनके चरण कहते हैं कि बहुत ही कोमल है और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही समझो कि आकर्षण करने वाले हैं। उनके छूने से शरीर में रोमांच हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए और चरणों की जो अंगुलियां हैं वो और भी विशेष सुशोभित हो रही है और उनके वहाँ नाखूनों की ज्योति एक निराले ढंग की ही ज्योति है। उनके चरणों के नीचे का भाग यानी चरणों के जो तलवे हैं जिसमें गुलाबी रंग की झलक है और उसके वहाँ अनेक प्रकार के चिन्ह हैं कि जैसे ध्वजा है, वज्र है, शंख है, चक्र है, अंकुश है इत्यादि बहुत से उत्तम उत्तम चिन्ह हैं। और भगवान की जैसे चरण है ऐसे भगवान की दोनों पिंडी, ऐसे भगवान के दोनों गोडे और सिंह है। और भगवान पीताम्बर पहरे हुए हैं और कागड़ी पहरे हुए हैं, उनकी कमर बहुत पतली है, नाभि उनकी गहरी है यानी गंभीर है और उधर के ऊपर तीन आपने समझो की रेखा और भगवान के चार भुजा है, दो भुजा नीचे को पसरी हुई है उनमें गदा और पद्म है और दो भुजा ऊपर को उठी हुई है उनमें शंख और चक्र है, चारों हाथों के वहां अंगूठी पहरे हुए और कड़ा पहरे हुए और बाजूबंद बांधे हुए हैं और चारों हाथ ऊपर से मोटे नीचे से पतले और बहुत ही चिकने और चमकीले और सुंदर और पुष्ट हैं। और भगवान के गले में अनेक प्रकार की माला है।